हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 27। कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येथे न त्वं शोषितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येथे न त्वं शोषितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येथे न त्वं शोषितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येथे न त्वं शोषितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येथे न त्वं शोषितुमर्हसि। शब्दों का अर्थ देखिए। जातस्य जन्म लेने वाले की ही निश्चय ही ध्रुव तथ्य है, मृत्यु यानी मृत्यु, ध्रुवम यह भी तथ्य है, जन्म जन्म, मृतस्य च मृत प्राणी का, च भी, तस्मात अतः अपरिहार्य यानी जिससे बचा ना जा सके, उसका अर्थ उसके विषय में न नहीं नहीं त्वम तुम शोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। अनुवाद देखिए, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करामहयं दराति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागजातम् सह कर्ण रघुनाथन वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहकणललिता श्रीविशाखान्विताश्च श्रीकृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपीककान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदी गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ग्रंथा श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। आज श्लोक नंबर 27 में हमें भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन की एक हकीकत से हमें रोशनास करा रहे, हमें एक हमारे जीवन की एक अटल सत्य से हमारा परिचय करा रहे हैं और वो है मृत्यु। और भगवान कहते हैं मृत्यु किसकी होती है, भगवान बता रहे हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर। मृत्यु किसकी होती है, जिसने जन्म लिया है। इसका मतलब है भगवान ने स्टेटमेंट दे दिया, भगवान ने बता दिया कि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी ध्रुव मतलब यह तथ्य है, ये किसी भी सूरत में टल नहीं सकता, इसको कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता इस नियम को कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। भगवान ने कहा जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अनिवार्य है, होने ही वाली है, होगी होगी और उसे कभी बचा नहीं जा सकता। अभी इसके लिए मनुष्य भले कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, खाली मनुष्य के लिए भगवान ने नहीं कहा, भगवान ने क्या कहा, जातस्य जिसका जन्म हुआ है, यानी कि पशु हो पक्षी हो पेड़ हो पौधे हो जलचर नभचर और गगनचर, सृष्टि में जितने जीव समाए वो सब मृत्यु का ग्रास बनने वाले हैं। वासुदेव जी बताते हैं कंस को, जब कंस अपनी बहन देवकी का रथ लेकर जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तुम लेके जा रहे हो उसी की आठवीं संतान तुम्हारा विनाश करेगी। वही कंस जो गोरों की डोरी, गोरों के जो रथ की रस्सी को पकड़ा हुआ था, फौरन से रस्सी छोड़ दी और क्या पकड़ लिया, देवकी के बाल पकड़ लिए कि तुम्हारी जो संतान होगी वो मेरे बेटे को मारेगी, तुम्हारी संतान होगी तो मारेगी ना, मैं तुम्हारा ही वध कर दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी संतान न जन्मेगी और न ही मेरा वध करेगी। तो फिर ना जब देवकी की यह हालत देखी, वासुदेव ने बहुत समझाया कंस को, देखो कंस इस संसार में जब जीवन उत्पन्न होता है ना, कोई भी जीव जब उत्पन्न होता है उसके साथ साथ अपने साथ साथ एक सर्टिफिकेट लेकर आता है कि मुझे इतनी सांसें इस संसार में जीना है, बस इसके अतिरिक्त और कोई सर्टिफिकेट नहीं होता उसके हाथ में और किसी चीज की गारंटी नहीं होती है, बस ये कि इतनी सांसें मुझे इस संसार में जीनी है ये लेकर आता है। इसलिए योगी जन जब क्रिया करते हैं तो सांसों की जो गति है ना उसको धीमा कर देते हैं, ताकि स्लो स्लो सांस लेंगे तो फिर सांस ज्यादा टाइम तक जी सकेंगे ना, यानी कि वो फिर सांसों की क्रिया को नियमित करते हैं, थोड़ा धीमा करते हैं। लेकिन ये भगवान का नियम है, जिस टाइम पर जिस जीव के लिए जिसका जन्म होता है ना, उसकी मृत्यु निश्चित है, कि एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि भाई इस टाइम पर इसकी मृत्यु हो जाएगी, अनिवार्य है। और आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ज्यादा से ध्रुव मृत्यु और मृत्यु ध्रुव मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, ध्रुवम मतलब वो भी अनिवार्य है, क्या जन्म, एक दफा जी गया उसके बाद मरा, और मरने के बाद ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, अगर मर गया है तो दोबारा उसका जन्म लेना भी अनिवार्य है। यानी कि अर्जुन जो शोक कर रहा था ना कि सब मर जाएंगे, इन सब की हानि होगी और मुझे पाप लगेगा, तो भगवान बोल रहे कि देखो मरना तो है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म लेना मृत्यु है। इस संसार में सब लोग जीना चाहते हैं, जन्म ले लिया है उसके बाद चाहते हैं कि हमारी कभी मृत्यु ना हो, है ना। ये संसार भगवान ने बताया, भौतिक प्रकृति के जितने भी जीव है ना, उनके शरीर में छह प्रकार के परिवर्तन होना अनिवार्य है। जीव, जैसे जीव का जन्म होता है, जैसे प्रकृति के साथ जब मिलाप होता है तो शरीर का जन्म होता है, उसके बाद वो बड़ा होता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसा शरीर उत्पन्न करता है, और उसके बाद क्षीण होना शुरू होता है, बूढ़ा हो जाता है, और फिर मृत्यु आ जाती है। जिस जीव का जन्म हुआ है इस संसार में, उसके साथ, क्योंकि प्रकृति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माया दक्षिण प्रकृति, ये प्रकृति जो है वो मेरे इशारे पर काम करती है, और मैंने सिस्टम ही ऐसा बनाया है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जिसका जन्म हुआ है और उसके बाद क्या वृद्धि होती है, कि बड़ा होता है, हमारी हाइट लंबी होती है, ऐसा कभी नहीं। उसके बाद क्या होगा, उत्पन्न करने के बाद क्या, क्षीण होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हाइट बढ़ती जाएगी, फिर तो हम लोग कितने लंबे होते। अगर ऐसा होना, भगवान ने ये सिस्टम बना दिया है तो अनिवार्य है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारी हाइट इतनी लंबी हो जाए कि हम आसमान तक बढ़े, क्योंकि कोई लोग 100 साल 80 साल तक, अगर ये कंटिन्यूस यही सिस्टम चलता रहता कि जो जिसने जन्म लिया वो बढ़ रहा है और उसके बाद वो बढ़ता ही चला जाएगा, नहीं, उसके बाद वो क्षीण होना शुरू हो जाएगा। एक सिस्टम है भगवान का कि भाई इतनी हाइट का प्राणी, और भागवतम में तो यहाँ तक लिख लिया कि किस युग के अंदर लोगों की हाइट कितनी होगी, और अभी कलयुग के लिए भी बताया कि जब घोर कलयुग आएगा ना, तो 3 फीट का आदमी जो होगा ना, 3 फीट का आदमी वो लंबा कहलाया जाएगा, कि ये बहुत लंबा है, 3 फीट का है। तो मतलब अभी हम देखे जिस तरह से, जैसे जैसे, तो मैंने ये नियम है कि भगवान ने ये नियम बना लिया, जिसका जन्म हुआ है, अब जन्म होने के बाद बड़ा होगा, बड़े होने के बाद रिप्रोड्यूस करेगा, उसके बाद क्षीण होगा, उसके बाद मृत्यु होगी, ये बना। लेकिन आज का जीव, आज का मनुष्य भगवान के साथ कंपटीशन कर रहा है, भगवान को बोलता है तुमने जन्म तो दे दिया, अब मैं इसको बूढ़ा नहीं होने दूंगी, बस बूढ़ा नहीं होना है इस शरीर को, इसलिए वैज्ञानिक लोग, साइंसदान लोग ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी इन्वेंशंस करते हैं कि शरीर बूढ़ा ना हो, बाल सफेद ना हो, शरीर में झुर्रियां ना हो, लेकिन कभी भी को ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये तो होना ही है, ये तो होगा ही। भगवान ने कहा तस्मात अपरिहार्य थे, अपरिहार्य थे का क्या मतलब होता है कि इस जिससे बचा नहीं जा सकता, ये अनिवार्य है, इसको कभी रोका नहीं जा सकता, जो नियम मैंने बनाया है, जिसकी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी। अभी अगर हम लोग थोड़ा बैक में जाएं, पास्ट में कितने लोगों ने, जो राक्षस हैं, बहुत सारे राक्षसों ने या बहुत सारे लोगों ने ऐसे सोचा कि हमारी मृत्यु ना हो, सबसे पहले किसने सोचा था, कंस को ले लेते हैं, देवकी को मारने के लिए आया, वसुदेव ने कहा देखो तुम इसको मारो नहीं, मैं हर बच्चा जो पैदा होगा वो तुम्हें दे दूंगा। पहले चलो ठीक है, एक आठवां की बात हुई, लेकिन फिर नारद मुनि की ना मेहरबानी से सारे बच्चों को कंस को दे दिया गया। लेकिन मरना तो पहले से निश्चित था, जिसके हाथों मरना है, भले कितनी कोशिश की उसने, देवकी को इतने सालों तक जेल में रखा, उसकी हर संतान की हत्या की, लेकिन मरना तो जिसके हाथ से था वो तो मारा। उसके अतिरिक्त देखो, अब ये तो उसने गलत तरीके से कोशिश की ना, देखो उसको मार कर इस तरह, लेकिन अगर सही तरीके से भी तपस्या करके 36,500 साल तक तपस्या की थी हिरण्यकश्यपु ने, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न भी कर लिया। ब्रह्मा जी आ गए और बोले क्या क्या वरदान दो तुमको, इतनी कठोर तपस्या की है तुमने। तो ब्रह्मा जी को बोला मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा भली मेरी आयु बहुत बड़ी है, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरी आयु जैसे हमने पढ़ा था ब्रह्मा जी की आयु कितनी ज्यादा है, 8,32,00,000,000 सालों का एक दिन, यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी की गणना अगर किया जाए 8,32,00,000,000 ईयर्स का एक दिन है उनका, और ऐसे कितने दिन, 365 दिन एक साल में होते हैं, और 100 साल की आयु है ब्रह्मा जी की। मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं खुद भी तो एक दिन मरूंगा, ऐसा नहीं है कि मेरी मृत्यु नहीं आएगी, मैं भी मरूंगा, तो जब मेरे अंदर भी मृत्यु आनी है तो मैं किसी और को अमर कैसे बना सकता हूँ, अमर नहीं बना सकता, और कोई मांगो। तो फिर हर अपनी बुद्धि से हर तरह की चालाकी करके देख ली, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना पशु से मरूं, ना नर से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं और ना घर के बाहर मरूं, और विष्णु के बनाए हुए किसी भी चीज के साथ, विष्णु के बनाए हुए किसी भी जीव के साथ मेरी हत्या ना हो। तो भी ब्रह्मा जी ने उसे वरदान तो दे दिया, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन को बचा तो नहीं सका। ऐसा तो नहीं है कि आज भी ऐसा है कि वो है, क्योंकि एक दिन उसको समाप्त होना था। नरसिंह भगवान ने उसकी हर जो भी उसको वरदान दिए थे ब्रह्मा जी ने, उस हर वरदान को पालते हुए, उस वरदान की केयर करते हुए भी उसको मारा। और एक और भी असुर की बात आती है, कौन, शंबरासुर। जिस शंबरासुर का वध होना था प्रद्युम्न के हाथों, भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, उसके हाथों शंबरासुर का वध होना था। रुक्मणी के महल से प्रद्युम्न को चुरा कर उसने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने उसको पेट के अंदर, मछली के पेट के अंदर चला गया, और वही मछली जो है वो शंबरासुर के बावर्ची, जो किचन है ना उसके अंदर जो कुक काम, रसोईया काम कर रहा था, उसी रसोई को वो मछली लाके दी गई। और जब उसने मछली का पेट छीला तो उसके अंदर से प्रद्युम्न निकले, और वही प्रद्युम्न जो के शंबरासुर के मृत्यु का कारण बनने वाले थे, वो उसी के महल में पलने लगे। यानी कि यहाँ से हम ये देख सकते हैं, भले कितनी ही कोशिश की जाए मृत्यु को टालने की, ये अनिवार्य है, मृत्यु कभी नहीं टल सकती। डिफरेंस क्या है, अभक्त अपने जीवन को बढ़ाने के लिए कोशिश करता है ताकि वो जीवन उसका और भी ज्यादा जीवन बढ़े, ताकि वो पाप कर सके। और भक्त अपने जीवन की परिधि को, जीवन की इस अवधि को बढ़ाने की कोशिश नहीं करता। जब परीक्षक को ये श्राप मिला कि 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसने वो कोशिश नहीं की कि मैं कैसे बचूं, बल्कि क्या कोशिश की कि मैं कैसे अपने इस जीवन को सफल करूं। ये होता है डिफरेंस भक्त के अंदर और अभक्त के अंदर। कंस को जब पता चला कि तुम्हारा देवकी का पुत्र तुम्हारा विनाश करेगा, तो उसने ये सोचा मैं कैसे इस मृत्यु को टालूं। लेकिन परीक्षक को जब पता चला कि 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु होगी, तो उसने सोचा मैं कैसे इतने थोड़े से समय में अपने जीवन को सफल करूं। यही होता है फर्क भक्त के अंदर और अभक्त के अंदर। भक्त को पता है, सबको पता है मृत्यु आने वाली है, भक्त क्या करता है मैं कैसे उस मृत्यु से पहले अपने जीवन को इस योग्य बना लूं कि मुझे दोबारा जन्म न लेना पड़े। और अभक्त क्या सोचता है मैं कैसे अपने जीवन की अवधि को बढ़ाता रहूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पाप करता रहूं। भीष्म पितामह के पास जब युधिष्ठिर और अर्जुन आए थे कि पितामह आप जब तक जीवित रहोगे तब तक ये अपराधी जीवित रहेंगे, क्योंकि अब उनके होते हुए, भीष्म पितामह के होते हुए कौरव सेना को हराना संभव नहीं था। तो आप बता दीजिए मैं कैसे, हम कैसे आपको मारे, आपको मारने का कोई उपाय बता दीजिए। भीष्म पितामह भगवान के भक्त थे और बता दिया कि यदि कोई स्त्री, जैसे पहले मैं आपको बताया था अंबिका ने जो, और उसने पहले से ही ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कारण बनूंगा, तो फिर भीष्म पितामह ने बताया कि यदि स्त्री आ जाएगी मेरे सामने, अंबिका आ जाएगी, तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो फिर यानी कि वो भक्त जो होते हैं वो पाप से बचने के लिए अपने जीवन को भी दांव पर लगा देते हैं कि मैं भले मर जाऊं लेकिन अपराधियों का साथ नहीं दूंगा, अपराध बढ़ने नहीं दूंगा। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो क्या सोचते हैं कि अपराध करने के लिए जीना चाहते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा मैं जीऊं और ज्यादा से ज्यादा अपराध करूं। तो यहाँ पर एक बात है, देखो भगवान क्या कह रहे हैं, जातस्य हि ध्रुवम जन्म मृतस्य का, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म निश्चित है, इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जन्म मृत्यु के चक्कर को नहीं रोका जा सकता। यदि जिसका जन्म हुआ है वो ऐसे कार्य करे जो कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताए हैं कि ये करने से अगर आप मेरे पास आओगे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मामुपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महाबाहो। ये महाबाहो एक बार जो मेरे धाम में आ जाएगा ना फिर दोबारा जन्म नहीं होगा, लेकिन जन्म लेने के बाद मृत्यु निश्चित है, वो होनी अनिवार्य है, उसके लिए किसी को भी रोका ऐसा है, जिसने जन्म लिया है उसको मरना है। लेकिन अगर उस जन्म में उसने जो भी कार्य किया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यम यम चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 6 भगवान बताते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, कि मृत्यु निश्चित है लेकिन मृत्यु के टाइम पर आपका जो भाव होगा, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, ये जो शरीर छोड़ने के टाइम पर तुम्हारा जैसा भी भाव होगा तम तमे वैति कौन्तेय, हे कौन्तेय तुमको वैसा ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर तुम उस टाइम पर अंत समय में मुझे याद करोगे तो क्या होगा, फिर आपको वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यानी कि भगवान ये जन्म मृत्यु की क्रिया को समाप्त करते हैं दोनों को एक साथ, सिर्फ एक खाली मृत्यु को नहीं छोड़ा जा सकता, मृत्यु से नहीं बचा जा सकता, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्म लेकर आप जैसा कार्य करते हो आपका अगला जन्म अभी ये भी अनिवार्य, अगला जन्म फिर भी अनिवार्य अगर आप भक्ति करते हो फिर भी, लेकिन वो आपका दूसरा जन्म इस भौतिक जगत में नहीं होगा, क्योंकि इस भौतिक जगत में क्या होगा, भगवान कहते हैं ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन माम उपैति तो कौन थे पुनर्जन्म ना विद्यते, फिर वापिस से आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। एक दफा वहां पर जन्म ले लिया ना जहां पर भगवान का धाम है, भगवान ने कहा माम उपैत्य तो कौन थे जब मेरे पास आ जाओगे तो दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो फिर आगे कहते भगवान श्री कृष्ण तस्माद अपरिहार्य थे, तस्माद इसलिए अपरिहार्य थे, यानी कि जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिस नियम को बदला नहीं जा सकता, उसके लिए धाम का परेशान होने की क्या जरूरत है, पता है जिसने जन्म लिया उसको मरना है। लेकिन ये आधुनिक वैज्ञानिक जो है, मॉडर्न साइंस जो है, वो क्या सोचती है कि मैं कैसे इसको सदैव के लिए जिंदा रहूं, उसी के लिए परेशान है, कैसे इसको बूढ़ा होने के लिए बचाऊं, कैसे इस शरीर को ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रखूं, कैसे इस शरीर में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त कराऊं, कैसे इस, अब वो शरीर जिसके लिए पहले से लिखा गया है कि वो जन्म लेता है, बड़ा होता है, प्रोड्यूस करता है, उसके बाद क्षीण होगा और फिर मृत्यु होगी उसकी, जरूरी है उसी के विषय में सोचने की क्या जरूरत है। भगवान ने कहा तस्माद अपरिहार्य थे, जिसे बचा नहीं जा सकता, इस नियम से कभी हम बच नहीं सकते। तो फिर भगवान ने कहा न तो हम शोचे तुम अर्हसि, फिर तुम्हें शोक करने की कोई कारण ही नहीं, तुम्हें शोक करना ही नहीं चाहिए उसके बारे में। अरे भगवान ने ये नहीं कहा तस्माद अपरिहार्य थे, तो अगर ये होना जरूरी है तो तुम युद्ध करो, तस्माद युद्धस्य, ऐसे नहीं बोला युद्ध करो। यानी कि अगर भगवान यहाँ पर बोलते कि जन्म जिसका हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म लेना निश्चित है तो तुम युद्ध करो, ऐसा नहीं बोला। हालांकि भगवान ने बोला है युद्धस्य भारत, बहुत दफा बोला, लेकिन इसलिए नहीं कि उसकी मृत्यु होने ही वाली है तो युद्ध करके मार लो। इस तरह से कि अगर भगवान यहाँ पर लिखते ना तस्मात युद्धस्य भारत, तो फिर ए भारत तुम युद्ध करो, तो फिर यहाँ पर इसका ये असर आता रिजल्ट कि कोई भी भगवद गीता का श्लोक उठा के दे देता कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना निश्चित है, तो मारते रहो, जिसे मर्जी आए मार डालो, जिसे मर्जी आए मार डालो, क्योंकि वैसे भी मरना है उसको। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा न तुम शोच तुम्हारसी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, उसके लिए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो अर्जुन यहाँ पर ये प्रश्न कर सकता है, ठीक है भाई जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो फिर भले वो अपने टाइम पर मर जाएंगे ना, मैं क्यों लड़ाई करके मारू, मैं क्यों मारू, मैं नहीं मारता हूँ ना, मरना ही है तो मरेंगे खुद ही, मैं क्यों बीच में पाप का भागी बनूं। यहाँ पर अर्जुन ये सोच सकता है कि मैं पाप नहीं करना चाहता, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि उसका कर्तव्य क्षत्रिय था, युद्ध करने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, हिंसा के लिए नहीं करना है उसको युद्ध, युद्ध किस लिए करना है, अहिंसा को रोकने के लिए हिंसा करना। कभी कभी क्षत्रिय को अहिंसा को रोकने के लिए हिंसा करनी पड़ती है, क्योंकि यदि अहिंसा को रोकने के लिए हिंसा नहीं करेंगे तो सब लोग अपराध करेंगे। अपराधियों को मारने के लिए जो हिंसा की जाती है उसको अहिंसा, क्योंकि अब एक बंदा अगर अपराध करता है उसको छोड़ दिया जाता है, क्षत्रिय छोड़ देता है, पुलिस डिपार्टमेंट या राजा छोड़ देता है, तो फिर क्या होगा, वो नियम बन जाएगा, उसने भी अपराध किया उसको भी सजा नहीं मिली, अभी मैं भी यही अपराध करता हूँ, उसने किसी का मर्डर किया उसको सजा नहीं मिली, उसने किसी को रेप किया उसको सजा नहीं मिली, उसने किसी की चोरी की उसको सजा नहीं मिली, तो फिर क्या होगा, पूरा जो समाज की व्यवस्था है ना उसका सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए क्षत्रिय धर्म है कि जब कोई अपराध करता है तो उसको सजा देने के लिए उसके साथ हिंसा की जाती है, तो वो पाप नहीं होता है। आगे भगवान बताएंगे अपराध तो तुम तब करोगे जब तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, ये तो तुम्हारे कर्तव्य का पालन है, तुम्हें ये करना चाहिए और इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य में, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, यानी कि जैसे हमने कर्म किए हैं यम यम वापि स्मरण भवम जगत्यं ते कलेवरम, जैसा जैसा हमने जन्म लिया है उसके अंदर जो जो कार्य किए हैं और अंत में जैसा हमने सोचा है उसके अनुसार हमें दूसरा जन्म लेना पड़ता है, अवधि पूरी होने पर हमें मरना पड़ता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। अब मरेगा तो दूसरा जन्म लेगा ना, एक कर्म पूरे होंगे। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्कर चलता रहता है, लेकिन जब तक भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते तब तक ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्कर से वृथा हत्या वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता। श्री प्रभुपाद जी बोलते ऐसा नहीं सोचो कि वैसे भी मरेगा तो फिर मार दूं मैं उसको, वृथा हत्या करूं, जिसका दिल करे उसको उसका खून कर दूं, ऐसा नहीं है। किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कभी कभी जंग के अलावा जब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है, यानी मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समाज के अंदर शांति बनाए रखने के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है, तो फिर क्षत्रिय को युद्ध करना पड़ता है, उससे हिंसा और हत्या भी करनी पड़ती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा से होने के कारण अपरिहार्य था। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर बात बोले कि जब भगवान ने सोच लिया वो कार्य तो होना ही है ना, कृष्ण की इच्छा है कि युद्ध हो, कृष्ण की इच्छा, क्योंकि कृष्ण आए थे अधर्मियों का नाश करने के लिए, तो बोला कृष्ण की जब इच्छा है कि युद्ध हो तो फिर तो चाहे अर्जुन युद्ध करना चाहे या ना करना चाहे। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं आगे चल के बोलेंगे कि तुम सोचना भी नहीं कि तुम इनको मार रहे हो, इनको तो मैंने पहले ही मार लिया है। और भगवान कहते हैं कि निमित्त मात्र भव सुर्व साची, हे सुर्व साची तुम्हें तो केवल निमित्त बनना है, बाकी जो मेरा कार्य है वो मैंने कर दिया है, सिर्फ तुम्हें श्रेय देने के लिए तुमसे ये युद्ध करवा रहा हूँ। तो 11वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है। तो इसी बात को श्री प्रभुपाद जी तो पहले से बता देंगे कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है इसलिए युद्ध होना जरूरी है, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय का धर्म है क्या? आपके धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करें। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोक आकुल क्यों था? अब उसको कर्तव्य पालन करना था तो उसके लिए उसको शोक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनको तो एक ना एक दिन मरना ही है। फिर और भी यहाँ पर, हाँ हमने ये बोला ना कि अर्जुन सोच सकता था कि फिर मैं क्यों इनके वध का कारण बनूं। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप इनको जल्दी नहीं मारोगे ना, जितना अपराधी जितना ज्यादा जिएगा उतना ही ज्यादा अपराध करेगा। तो वो जो अपराधी को सजा दे रहा है, यानी कानून या राजा या फिर जो क्षत्रिय है, वो उस अपराधी को जब सजा दे रहा है ना, तो उसके ऊपर बड़ी कृपा कर रहा है, क्योंकि जितने अपराध उसके पास ज्यादा जमा होते जाएंगे उतना ही उसको दंड मिलने वाला है। तो अच्छा होगा कि उस अपराधी को ज्यादा से ज्यादा जल्दी मार डाला जाए, है ना। जैसे कानून अक्सर बोलता है ना कि इसको मार देने की सजा देता है, फांसी की सजा देता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा करता है, क्योंकि जब तक जिएगा तब तक तो अपराध करेगा, और जितने अपराध करेगा उतने दफा उसको नरक में जाना पड़ेगा। तो भगवान उसको बता रहे हैं कि ये तो तुम और भी अच्छा कर रहे हो, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य अधर्म का साथ दे रहे हैं। जब तक अधर्म का साथ, अभी तो उन्होंने सिर्फ एक द्रौपदी को नंगा होते हुए देखा है और उस टाइम पर कुछ नहीं बोला। अब आगे अगर ये काम, मतलब आगे अगर ये लोग जीते रहेंगे तो दुर्योधन न जाने क्या क्या करेगा, वो सब उनको देखना पड़ेगा। और जो अपराधी का साथ देता है वो भी अपराधी होता है, तो उनको सबको ये अपराध का बोझ उनका बढ़े नहीं, इसलिए तुम्हें उन्हें मार डालना चाहिए। नो, उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। वह विधि यानी कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पापों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत ही भयभीत था। यानी कि वो सोच रहा था कि मैं ये अपराध करूंगा तो पहले जैसे हमने बताया धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म की स्त्रियां खराब, ये सब बता, तो बोला ये सबसे बहुत भयभीत था। तो बोला तुम अगर नहीं भी मारोगे तो ये तो मरेंगे ना वैसे भी, और भीष्म ये सब मरेंगे तो ये सब तो होने ही वाला है, क्योंकि अब अधर्म के हाथ में जब चली जाएगी सत्ता तो फिर वो कितना अधर्म करेगा वो तो तुम सोच भी नहीं सकते। और भगवान आगे श्रील प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सिर्फ अगर ये सोचे कि मेरे स्वजनों की मृत्यु हो जाएगी तो फिर वो अपने कर्तव्यों का पालन ना करे तो वो मृत्यु को तो रोक ही नहीं सकता ना। भगवान ने बोला जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु अनिवार्य है, मृत्यु तो रुकेगी नहीं, क्योंकि स्वजन आए हैं तो एक ना एक दिन मरेंगे। राम गए हो, रावण गए हो, जाको बहु परिवार, तो फिर और लेकिन अगर वो अनुचित कर्तव्य पथ यानी कि उसका क्षत्रिय पथ है लेकिन फिर भी वो अपने इस कर्तव्य पथ को छोड़ देगा और दूसरा पथ इस मतलब ले लेता है ब्राह्मण का, या फिर भीख मांगना शुरू कर देता है या कुछ और कार्य करता है, तो उसे नीचे गिरना पड़ेगा, क्योंकि अपने कर्तव्य को तो उसे निभाना ही चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, एक न एक दिन उसको मृत्यु आएगी, और सांसें हमें गिनकर मिली हैं, लेकिन फिर भी शास्त्र कहता है यदि कोई भक्ति करता है, भागवतम महापुराण का श्रवण करता है, श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करता है, तो उसकी आयु बढ़ती है, उसके अंदर जीवन शक्ति बढ़ती है। और यदि कोई संत हमें आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, यानी कि उनके मुख से निकले हुए वाक्य को भगवान को सिद्ध करना पड़ता है। जैसे हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, अगर हम देखें सत्यवान सावित्री, उनके पति की मृत्यु हो गई थी लेकिन उसने अपने सत्यत्व से यमराज को जीत लिया, यमराज के आशीर्वाद को जीता और उसके वापस उसके पति के प्राण मिले। तो ये जो है ना ऑप्शनल केस होते हैं। जैसे भगवान ने बोला कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन अगर हम शास्त्र में देखते हैं तो गुरु महाराज का उदाहरण ऐसा है कि उन्होंने उनके शरीर की मृत्यु नहीं हुई थी, वो सशरीर भगवान ध्रुवलोक में चले गए थे। और दूसरे भी ऐसे मीराबाई का उदाहरण है कि मीरा जो है वो भगवान की विग्रह में लीन हो गई थी। उसके अलावा तुकाराम जी का उदाहरण है कि तुकाराम की भी मृत्यु नहीं हुई थी, और रसिकाचार्य जी जो कि खीर चोर गोपीनाथ जी की सेवा करते थे और देखते ही देखते सारे उसके शिष्यों के सामने ही वो खीर चोर गोपीनाथ में समा गए, उसी तरह से नरोत्तम दास ठाकुर, इन सबकी मृत्यु नहीं, मतलब वो शरीर गए, लेकिन ये स्पेशल केस होते हैं जो भगवान के परिकरगण होते हैं, वो सिर्फ भगवान की लीला को यहाँ पर दिखाने के लिए आते हैं, भगवान की महिमा को बढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन ये साधारण जो नियम है वो ये है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिस जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म लेना अनिवार्य है, और इसके लिए दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।